इश्यूज़ आ रहे थे। हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ गांधी साहब की स्टडी में, और मैं ये भी बताता चलूँ आपको इब्तदा में कि चूँकि लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर कोई टेक्निकल अमला हमारे पास मौजूद नहीं है, और हम अपने तौर पे ही मोबाइल फ़ोन और बाकी ऐप्स के ज़रिए इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो लाइफ के अंदर शायद ये दिक्कत आपको कभी कभी महसूस हो। बारकैफ उम्मीद है मेरी आवाज़ इस वक्त साफ़ आ रही होगी। हमने पिछली दो नशस्तों में गांधी साहब दाढ़ी के ऊपर बहुत तफसील से आपका नुक्ता नज़र जाना, कुरान मजीद की आयात, अहादीस, लोगों के तासुरात, फिर जो एतराज़ किया जाता है बिलुमूम आपके जो नुक्ता नज़र से मुख्तलिफ राय रखते हैं लोग, 23 के करीब एतराज़ात ज़ेरे बहस हैं, पहली दाढ़ी थी, गुफ्तगू उस पर बहुत हो गई। मैं ये चाहता हूँ कि नए मौजू का आगाज़ हो जो औरतों के पर्दे से मुतल्लिक है, लेकिन इब्तदा में चंद वो तासुरात जो लोगों की जानिब से मौसूल हुए हैं वो आपके सामने रखूँ, और चाहूँगा कि मुख्तसर कमेंट्स आप उन पर करते जाएं और फिर एक खुलासा अपनी पूरी बात का आप कर दें। पहला सवाल लोगों ने पूछा है कि ठीक है, कुरान मजीद की उस आयत के तहत फितरत में दाढ़ी शामिल नहीं है, तो फिर हम कोई आदमी अगर अपनी भवें काट दे, अपनी पलकें मुंडवा दे, तो उसको किस उसूल पे कहेंगे कि तुम अपनी फितरत तब्दील ना करो?
उससे ये कहेंगे कि तुम एक नाशायस्ता हरकत कर रहे हो। दुनिया में इंसान जब जीता है तो ऐसा ही नहीं है कि वो हर वक्त कायदे जाब्ते में रहता है। बहुत से लोग ऐसे इनहराफात इख्तियार करते हैं जिन पर हमें तवज्जो दिलाना होती है। आदमी अपने सर पर राख डाल ले, अपने कपड़े फाड़ ले, जैसे मलंग किस्म के लोग होते हैं उस तरह की हैत बना के बाहर निकल आए, तो उसे तवज्जो दिलाई जाएगी कि ये तहजीब, सकाफत और इंसान के शरफ़ के ख़िलाफ़ है। अल्लाह ताला ने आपको एक शक्ल व सूरत दी है, एक शख्सियत दी है, उसकी इज्जत करना सीखें। तो ये बात कहेंगे, हर चीज़ को मज़हबी क्यों बनाया जाए?
ठीक हो गया। अच्छा, हम सब अगला सवाल ये है कि ये सहाबा इकराम अगर दाढ़ी सुन्नत के तौर पे, दीनी रिवायत के तौर पे मुंतकिल नहीं हुई, तो फिर क्या वजह है कि तमाम सहाबा इकराम ने दाढ़ी रखी, किसी ने नहीं मुंडवाई, और सब के यहाँ ये भी ज़ेरे बहस है कि दाढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, फिर इसकी क्या वजह है?
ये कैसे मालूम हुआ? तमाम सहाबा ने, यानी बाकायदा कोई सर्वे किया गया है, कोई गुफ्तगू हुई है, कोई बयान दिया है उन्होंने? इस तरह की बहुत सी बातें लोग कह देते हैं। उस ज़माने का आम रवाज ये था, जिसकी बुनियाद पर कयास किया जाता है, मुशरिकीन ने भी दाढ़ी रखी हुई थी, मजूस ने भी दाढ़ी रखी हुई थी, अहले किताब ने भी दाढ़ी रखी हुई थी। खुद रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तवज्जो दिलाई है तो यही कहा है कि दाढ़ी मूछ की हैत के बारे में मजूस के मुतकब्बिरीन, इसी तरीके से मुशरिकीन के मुतकब्बिरीन, ऐसे ही अहले किताब के मुतकब्बिरीन ये वजह बना लेते हैं कि बड़ी बड़ी मूछें रख लेते हैं और छोटी दाढ़ी रख लेते हैं। मैं ये हदीस आपको पढ़ के सुना चुका हूँ। तो आपने फरमाया कि तुम्हें ऐसी वजह नहीं इख्तियार करनी चाहिए। जब ये बात कही, हर मौके पर कहा कि खालिफुल मजूस, खालिफ अहलुल किताब, खालिफुल मुशरिकीन, उनकी मुखालफत करो, उन्होंने एक गलत हैत, गलत वजह अपना ली है। तो दाढ़ी तो सभी रखते थे। आप जानते हैं कि मसीही, यहूदी, अभी पिछले ज़माने तक सब दाढ़ियाँ रखते थे। आप तस्वीरें उठा के देख लें, दाढ़ी तो काल मार्क्स की, हमारे यहाँ की दाढ़ियों से भी बड़ी थी। तो इसलिए इससे क्या इस्तदलाल किया जाता है?
ठीक। अच्छा, हम सब अगला सवाल यह आया कि ये बात तो तय है कि दीन में रसूल सल्लम से मोहब्बत, आपसे ताल्लुक़, आपको सब चीज़ों से अजीज़ समझना, ये सबसे अव्वलीन तकाज़ा है, तो क्या इसका एक ज़िमनी पहलू ये नहीं निकलता कि जैसे आपकी हैयत थी वैसे ही आपसे मोहब्बत करने वाले का आदमी लाजमन वो बनाए हैयत, दाढ़ी रखे?
ये लफ्ज़ लाजमन आप कैसे बोल सकते हैं? यानी दीन जो आपने दिया है उसमें भी हर चीज़ लाजिम नहीं है। कुछ चीज़ें लाजिम की गई हैं जिनको हम फ़र्ज़ कहते हैं, वाजिब कहते हैं। कुछ चीज़ें दीन में पसंदीदा होती हैं, मुस्तहबात हैं, अच्छी हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कोई इकदाम अगर आप करते हैं तो ये इकदाम जो है पसंदीदा होगा। हम इसकी तहसीन भी कर सकते हैं, लेकिन उसको भी होश गोश के साथ होना चाहिए। कोई आदमी ये कहेगा कि मैं कार पर सवार नहीं हूँगा, मैं हमेशा गधे पर सवारी करूँगा। कोई शख्स ये कहे कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर का मार्का लड़ा, उहद का मार्का लड़ा, तीर तफंग के साथ लड़ा, बल्कि रवायतों में दज्जाल के ख़िलाफ़ भी जंग तीर तलवारी से बयान हुई है। तो हम ये सब असलहे जो बना रहे हैं इनकी फैक्ट्रियाँ बंद कर दें और इनको ख़रीदना ख़त्म कर दें। हमारी अफवाज अब तीर तफंग से मैदान में उतरा करेंगी और इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद हासिल हो जाया करेगी। तो ये इस्तदलाल ठीक होगा? तो ये देखना पड़ता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो किस दर्जे में है। फिर यह है कि मोहब्बत को आप दीन कैसे बना सकते हैं? मोहब्बत एक जज्बा है, उसका इजहार होता है। जो मोहब्बत दीन में मतलूब है वो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी और अल्लाह ताला ने भी वाज़े कर दी है कि जब आपके सामने कोई ऐसी चीज़ आए आए जिसको अल्लाह अल्लाह का रसूल दीन करार दे रहा है, उसका मुतालबा कर रहा है, तो उसके मुकाबले में एक बंदा मोमिन को ना अपनी जान अजीज़ होनी चाहिए ना अपना माल अजीज़ होना चाहिए। जब अल्लाह अल्लाह के रसूल की तरफ से ये मुतालबा सामने आ जाए, ये चीज़ है जो दीन में बयान की गई।
ठीक। अच्छा, एक और सवाल हमसे भी मौसूल हुआ कि बाज़ लोगों को, मसलन बाज़ फ़ौजी होते हैं, उनको बाज़ मनसबी तकाज़ों के तहत ख़ास हैयत अपनाने का कहा जाता है। मसलन वाघा बॉर्डर पे जो लोग हैं उन्होंने लंबी लंबी मूछें रखी हुई होती हैं, तो वहाँ पर, और वो मूछें यकीनी तौर पर रोप के लिए ही हैं जब वो सामने खड़े हुए हैं, तो इस सूरत हाल में क्या उनका हुक्म होगा?
इसके लिए खुद दीन में ये चीज़ मौजूद है कि जो आम अहकाम होते हैं उनमें अगर कोई ज़रूरत पेश आ जाती है तो इस्तेसना के वसूल हैं। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौके के ऊपर, आप जानते हैं कि सहाबा से ये कहा कि हम रमल करेंगे, यानी जब तवाफ़ कर रहे होंगे तो इस तरह तरह कंधे उचका कर अपनी शान का इजहार करते हुए चलेंगे, इसलिए कि मुशरिकीन ने उस मौके के ऊपर तंज़ो तारीज़ की कुछ बातें की थी सहाबा इकराम के बारे में। जंग के मैदान में बाज़ औक़ात ये ज़रूरी होता है कि आप अपनी शान, अपने वक़ार का इजहार करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें मुस्तस्नियात से मुतल्लक होती हैं, उनको वहीं रखना चाहिए, उनको आप आम कानून नहीं बना सकते।
बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा हम सब, अगला सवाल जो है वो इस हवाले से ये आया है कि जब हम ये कहते हैं कि दाढ़ी दीन नहीं है, तो एक साहब ने सवाल पूछा है कि अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको दीन बनाना चाहते तो वो क्या तरीक़ाकार इख्तियार करते, यानी रखी हुई तो उन्होंने थी, अगर उसको दीन बनाना चाहते तो क्या मुख्तलिफ काम करते जिससे बतौर सुन्नत दीन बन के
हाँ,
सामने आ
मतलब मैं
जाता।
ये सवाल करता हूँ, अगर रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमामा पहनने को दीन बनाना चाहते, अगर आप तहमत बांधने को दीन बनाना चाहते, अगर आप तलवार से जंग करने को दीन बनाना चाहते, तो फिर क्या करते? यही करते ना कि फिर सब लोगों को बताते कि ये दीन है, एक एक शख्स पर उसको वाज़े करते, क्योंकि एक चीज़ दीनी है देखने में, जैसे नमाज है, तो इसमें तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, आप अमल कर दीजिए, वाज़े हो गया कि ये दीन है। जो चीज़ अपनी नौइयत के लिहाज से दीन नहीं है, उसमें तो फिर एक एक दरवाजे पे दस्तक दे के ऐलान करना पड़ेगा, वैसे ही मुनादी करनी पड़ेगी जैसे जब किबला तब्दील किया गया तो गली गली में मुनादी की गई, बताया गया कि किबला तब्दील हो गया है। तो दीन बनाने का अमल रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे करते थे, यानी अगर कोई चीज़ पहले से दीन की हैसियत से चली आ रही है तो उसकी तसवीफ़ फरमाते थे, अगर कोई शुबा था दूर करते थे, फिर ये कि उससे मुतल्लक तहदीद होती थी कि देखो ये काम नहीं करना, ये बताते आप, कभी दाढ़ी नहीं मुड़वानी तुमने, कभी बाल नहीं कटवाने, ये सब बातें फिर मनफी अंदाज में भी कही जाती, कभी नहीं कही आप।
ठीक, बिल्कुल समझ में आती है बात। अच्छा अगला सवाल हम सभी मौसूल हुआ है कि फिर अगर कोई शख्स दाढ़ी रखता है तो हम उसको किस उसूल पे कहेंगे कि दाढ़ी एक मुश्त से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए?
मैं तो नहीं कहूँगा, यानी मेरे नज़दीक ये बेमानी सी बात है, जब एक चीज़ का ताल्लुक दीन से नहीं है तो एक आदमी अपने ज़ौक के लिहाज से, अपनी वज़ाकता के लिहाज से जैसी दाढ़ी चाहे रखे, छोटी रख ले, बड़ी रख ले, ये बहसें ही बिल्कुल बेमानी हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है। जब दीन में कोई चीज़ मुतय्यन की जाती है तो अल्लाह के पैगंबर इसे हमारे इज्तिहादात पर इस तरह नहीं छोड़ते, फिर वो बताते हैं कि आपने रखनी ऐसे है, ये एहतमाम करना है। ये चीज़ें चूँकि ज़ेर बहस ही नहीं है, इनको लोगों ने इस्तिंबात करके ज़ेर बहस मौजू में दाखिल कर दिया।
ठीक। अच्छा हम सब, एक बड़ा दिलचस्प है, एक सरकारी मुलाज़िम है वो ये कहते हैं कि मैंने इस नीयत से दाढ़ी रखी हुई है कि कोई बंदा आकर मुझे देखकर कोई गलत काम ना कह सके, तो ये कैसा है?
देखिए, हर आदमी की अपनी एक हिकमत अमली है, अगर उन्होंने अपने लिए ये हिकमत अमली इख्तियार की है और इसमें उन्हें कामयाबी होती है तो मुझे आपको क्या एतराज़ का हक है।
ठीक। अच्छा एक साहब ने पूछा हम सब, क्या हुजूर की मोहब्बत में दाढ़ी रखने के नतीजे में आखिरत में भी कोई अजर मिलेगा हमें?
देखिए, जो काम भी आप अल्लाह के पैगंबर की मोहब्बत में करते हैं अल्लाह ताला उसको पसंदीदगी की निगाह से देखेंगे, लेकिन मैंने पहले भी तवज्जो दिलाई कि आपको वही काम करने चाहिए कि जो आज के तमद्दुन में करने मौजू हो। इसकी मिसालें दी हैं मैंने, दाढ़ी आपने रख ली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रख लें, लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं अब तहमत बांध के फ़ौज में जाऊँगा इसलिए कि यही सुन्नत है, मैं गधे पर सवारी करूँगा इसलिए कि यही सुन्नत है, तो ये आप दीन के साथ भी मजाक करेंगे। और मैं यहाँ एक चीज़ की तरफ तवज्जो दिला दूँ, और वो ये है कि जो चीज़ दीन में है और आप उसको दीन से निकालते हैं, जिस तरह वो एक बड़ा जुर्म है, इस तरह जो चीज़ दीन में नहीं है उसको दीन में दाखिल करते हैं, ये उससे भी बड़ा जुर्म है। ये अल्लाह ताला ने ये बताया है कुरान मजीद में कि ये इफ्तरा अनल्ला बन जाता है, ये अल्लाह पर झूठ बांधना है, यानी अल्लाह का काम है ना दीन देना, तो जब आपने अपनी तरफ से कोई दीन बना के चीज़ दीन में दाखिल कर दी तो ये क्या चीज़ है? ये वही चीज़ है जिसको कुरान मजीद में बयान किया जाता है कि तकुलूना अलल्लाहि मा ला तालमून, तुम अल्लाह ताला की निस्बत से झूठ बांध रहे हो, तो इसमें बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है। जिस तरह दीन के अंदर कोई चीज़ है उसे निकालने के लिए बरसों आपको गौर करना चाहिए कि आप कहीं गलती ना खा जाएं। इसी तरह दाखिल करने के लिए भी उससे ज़्यादा गौर करना चाहिए, क्योंकि ये फिर बिदत हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा इस मामले में मुतनब्बे रहना चाहिए। इज्तिहाद में गलती हो सकती है, वो गलती को अल्लाह माफ़ करता है, लेकिन बड़ी एहतियात से ये बातें करनी चाहिए। ये इस तरह के मामूली मामूली किस्म के इस्तदलालात की बुनियाद पर नहीं कही जा सकती।
ठीक। अच्छा आलम साहब, एक कमेंट ये मौसूल हुआ है कि कहते हैं एक सहाबी की दाढ़ी थी और सिर्फ एक बाल था, तो उन्होंने वो बाल भी जब कटवा दिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखना छोड़ दिया, इसकी क्या
ये
कीमत?
ज़रा आप इस रवायत की तहकीक करके मुझे बताइएगा कहाँ पाई जाती है। इस तरह के बहुत से किस्से हैं, लोग बयान करते रहते हैं।
ठीक। अच्छा हम सब, एक दो तीन और सवाल हैं इसी से मुतल्लक, फिर हम इंशाल्लाह उस खुलासे की तरफ बढ़ेंगे। एक सवाल ये है कि बहुत सारे लोग आजकल फैशन के तौर पे मूछें रखते हैं, लेकिन उसमें मकसूद जो है वो तकब्बुर नहीं होता है, तकब्बुर को नुमाया करना नहीं होता, बस एक फैशन है, चल पड़ा है, लंबी लंबी मूछें रख ली, तो इस सूरत में दीन का क्या हुक्म होगा?
दो चीज़ों को अलग अलग हमेशा कर लें। एक ये है कि एक ऐसी हैत या ऐसी वज़ाकत है जिससे मुतलक अमूमी तासुर ही मुतकब्बिराना है, तो हमारे दीन में तालीम दी गई है कि उससे बचना चाहिए आदमी को। यानी उसको देखने के बाद आपकी नीयत नहीं पूछी जाती, आपकी हैत से ये अंदाज़ा होता है कि ये क्या सूरत बना रखी हुई है। तो ऐसी सब चीज़ों पर तवज्जो दिलानी चाहिए। और रिसालत बाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको तो सुन्नत का दर्जा दे दिया, ये बात कि मूछें पस्त रखी जाए, इसको तो सुन्नत का दर्जा दे दिया। और आप देखिए कैसे दिया है, किस तरह ताकीद की है, फिर उसकी वजह बताई है। और हमने जब उसको दीन के मजमूई निज़ाम में रख के देखा तो मालूम हुआ कि ठीक जो दीन में तज़किए को हदफ या मकसद के तौर पर बयान किया गया है, ये रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म उससे रिलेट कर रहा है। इसको अलग से बयान किया और ये बताया कि इसकी क्या हैसियत है। चुनाचे खमसुम मिनल फितरा वाली रवायत में सिर्फ इसी को बयान किया।
ठीक
तो इसके बारे में तो हमारे पास वाज़ह हिदायात मौजूद हैं, यहाँ बहस की गुंजाइश नहीं।
ठीक अच्छा आप सब, एक सवाल ये आया है कि अगर कोई अफसर अपने मातहत को दाढ़ी मुंडवाने का हुक्म दे किसी ज़रूरत के तहत, एक और मसलन ज़रूरत आजकल जेन्यन सामने आई है, कोई कहते हैं कि डॉक्टर्स जो हैं जिस वक्त मास्क पहनते हैं कोरोना वायरस के ज़मन में, तो उनकी दाढ़ी अगर बहुत बड़ी हो तो वो मास्क कवर नहीं कर पाता, तो इस तरह की सूरत हाल में कोई इस तरह का हुक्म दिया जा सकता है?
देखिए जी, मेरे नज़दीक तो चूंकि ये कोई दीन का मसला नहीं है, इसलिए इस तरह की सारी हिदायात की जा सकती हैं। लेकिन वो आदमी जो उसको दीन का हुक्म समझता है, उसके लिए तो बड़ा मसला पैदा होगा ना। तो वो क्या करेगा? अब जाहिर है कि या वो अपनी मुलाजमत छोड़े और या फिर अपने अफसरों के हुक्म पर अमल करे। तो मैं ये तो ज़रूर कहूँगा कि आप किसी चीज़ को दीन समझते हैं तो फिर आपको अज़ीमत के साथ उस पर अमल करना चाहिए। लेकिन मेरे नज़दीक चूँकि ये दीन का मसला नहीं है, तो इसलिए आदमी का ज़ौक है और ज़ौक के मामले में तो कोई इसरार नहीं करना चाहिए।
ठीक। आखिरी सवाल जो है वो इस ज़मीन में लेते हैं, कहते हैं कि बाइबल के अंदर भी हम सभी कहते हैं कि जो दीन है वो असल में अंबिया की उसी रिवायत से आया है जो पहले जारी था, तो हमें बाइबल में बाज़ इबारतें मिलती हैं जिनमें कहा गया है कि ना सर के बाल काटो और ना दाढ़ी मुंडाओ या दाढ़ी के बाल काटो, तो उसको कैसे देखते हैं?
ये नज़र की नौईयत की चीज़ें हैं। आप अगर जानते हो इस बात को कि जब आदमी अपने आप को अल्लाह की नज़र करता है तो उसके कुछ आदाब हमारी शरीयत पे भी मुकरर किए गए हैं और ये हमेशा से रहे हैं। यानी उसमें आप नाखून नहीं तराशते, उसमें आप बाल नहीं तराशते, यही हम इहराम में करते हैं। और इसी के बारे में रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि जो आदमी कुर्बानी करेगा तो वो यकम जुलहज के बाद यही एहतमाम करेगा। तो इस ज़मन की चीज़ें बाइबल में भी आई हैं।
ठीक। तो ये हम सब कुछ ज़िमनी सवालात हमें मौसूल हुए थे, अब मैं चाहूँगा कि जो पूरा नुक्ता नज़र है दाढ़ी के मुतल्लिक उसका आप अगर खुलासा करें, ये बताना चाहें कि दाढ़ी की दीनी हैसियत क्या है, तो आप क्या कहेंगे?
मैं ये कहूँगा किसी चीज़ की दीनी हैसियत को मुतय्यन करने के लिए हमें जज्बात से बिल्कुल अलग होकर सबसे पहले अल्लाह की किताब कुरान मजीद को देखना चाहिए। मैंने बहुत तफसील के साथ तज्जिया करके आपको बताया है कि कुरान मजीद में इसका कोई ज़िक्र भी कहीं मौजूद नहीं है। ये बात कि एक फलां पैगम्बर ने दाढ़ी रखी हुई थी, ये दाढ़ी के हुक्म को बयान करने का उसलूब नहीं होता। ये तो एक बयान वाक़िया है और इस तरह का ज़िक्र कहीं भी आ सकता है। कोई चीज़ भी किसी जगह इस ज़ैल की बयान नहीं हुई। जिन लोगों ने बाद आयात से ज़िमनी इस्तदलाल किया, उसकी गलती हमने वाज़े कर दी और ये बताया कि उसमें इंसान की वो फितरत ज़ेरे बहस है जो दीन की बुनियाद बनती है। यानी तज़किया, यानी अख़लाक़ी तत्हीर, यानी अल्लाह का तसव्वुर, यानी रबूबियत का इकरार, वो चीज़ें हैं जो वहाँ ज़ेरे बहस हैं। इसी तरह से अगर उसके तहत भी कुछ चीज़ों को देखना है फितरत की हैसियत से, तो ये देखा जाएगा कि मुझे खुदा ने मर्द बनाया है, किसी को औरत बनाया है, उसे अपनी इस हैसियत को तब्दील करके अल्लाह ताला के साथ सरकशी नहीं इख्तियार करनी चाहिए। हमें कुछ अल्लाह ताला ने बाल उगाए हैं, उनमें सीने पर भी होते हैं, जिस्म के दूसरे हिस्सों पर भी होते हैं, ज़ेर नाप भी होते हैं, सर पर भी होते हैं, इनकी तराश कराश क्या रखनी है क्या नहीं रखनी, ये इंसान के ज़ौक पर छोड़ दिया गया है। इसका फितरत के इनहराफ से सिरे के सिरे कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो इसकी गलती वाजे की गई। और फिर ये बताया गया कि जो सुन्नत होती है, यानी जिसको रिसालत में आप दीन की हैसियत से जारी करते हैं और वो पैगंबरों से चली आ रही होती है, आप उसमें इजाफा भी करते हैं, तरमीम भी करते हैं, उसमें भी इसका कोई जिक्र नहीं मिलता। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इसमें कोई इस नौयत की बात नहीं कही गई, न कभी सहाबा कराम ने इस हैसियत से इसको मुंतकल किया है। कुछ रवायात हैं, उन रवायात में रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बास सहाबा को बास चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाई है, उसको लोगों ने गलती से समझा है कि ये दाढ़ी रखने का हुक्म है। जब उन सब रवायतों को आप जमा करते हैं तो मालूम होता है कि दो तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। यानी एक ये कि वज़ाकता के ज़ैल में अहले किताब ने मसलन, जैसे मैंने अबू उमामा बाहरी की रवायत आपके सामने पेश की और बयान किया, एक बिदत इख्तियार कर ली थी, तो आपने उसकी इसलाह की कि ये बिदतें यानी जूते पहनने के बारे में, मौज़े पहनने के बारे में, दाढ़ी रंगने के बारे में, तो आपने फरमाया कि इन बिदतों में उनकी मुखालफत किया करो, यही पैगम्बरों का काम है। और इसी तरीके से ये मालूम होता है कि मजूस में भी, अहले किताब में भी और मुशरिकीन में भी, मुतकब्बिरीन लीडर किस्म के लोग ऐसी वज़ाकता बनाते थे, उसको खुद हुजूर ने बयान कर दिया कि छोटी छोटी दाढ़ी रख लेते हैं, बड़ी बड़ी मूछें रख लेते हैं, तो इसको आपने पसंद नहीं फरमाया और ये कहा कि ये मुतकब्बिराना वज़ाकता की चीज़ है। ये मुतकब्बिराना वज़ाकता की चीज़ है, इसको हमने दीन के उसूल से समझा। यानी ये जाना कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर तबसरा फरमा रहे हैं और ये कह रहे हैं खालिफुल मुशरिकीन, खालिफुल अहलुल किताब, खालिफुल मजूस, यानी इनकी मुखालफत करो, तो दाढ़ियाँ तो वो रखे हुए हैं, मुझे भी रखे हुए हैं, उनकी वज़ाकता कैसी है? वो मुतकब्बिराना वज़ाकता है, उसके नतीजे में तथहीर के तकाज़ों पर कोई फ़र्क पड़ता है तो पैगंबर उसकी इस्लाह करते हैं। और उसूली तौर पर हमने तवज्जो दिलाई कि दीन का मकसद तज़किया है, ये अल्लाह ताला ने मुतय्यन कर दिया है, उसके हर हुक्म का रिलेशन इस मकसद के साथ मुतय्यन करना पड़ेगा। और तज़किया का मतलब क्या है? ये कि हम तथहीर करें, हम पाकिजगी इख्तियार करें। चुनाचे मैंने आपको बताया कि जब भी दीन का आप इस्तिक्सा करते हैं और उसके अहकाम को देखते हैं, वहाँ अहकाम ज़ेर बहस हैं, यानी एक तो ईमान और अकायद की चीज़ें हैं ना, वो अलग हैं। दीन के अहकाम का जब आप इस्तिक्सा करते हैं तो आपको मालूम होता है कि उसमें इबादात होती हैं, उसमें तहारत बदन के अहकाम होते हैं, उसमें तहारत खुरनोश की चीज़ें होती हैं कि तय्यबात खाओगे, खबाइश से इज्तनाब करोगे, और उसमें अखलाक की तथहीर, अखलाक के तज़किये के अहकाम होते हैं। तो हर चीज़ वहाँ होगी। मूछों को पस्त रखना ये तहारत के लिए भी ज़रूरी है और ये मुतकब्बिराना एहसास को ख़त्म करने के लिए भी ज़रूरी है। और इस मामले में जो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो पूरी बातें कही हैं, जब उनको आप बिल्कुल ठीक रख के देखते हैं तो उससे भी यही मुद्दा है कि लोग दाढ़ी रखेंगे, मर्द दाढ़ी रखते थे, एक लंबे अरसे तक सभी लोग दाढ़ी रखते रहे हैं, यानी तसव्वुर भी नहीं था कि दाढ़ी नहीं रखी जाएगी। आम तौर पर चंद लोग होते थे जो दाढ़ी मुड़वाते थे, वरना दाढ़ी रखी जाती थी। तो उस दाढ़ी की और मूंछ की वज़ाकता कैसी होनी चाहिए? आपने बाल रखे हैं तो कैसे रखने चाहिए? आपने लिबास पहना है तो कैसा पहनना चाहिए? तो ये चीज़ है जो हदीसों में ज़ेरे बहस है, इसको लोगों ने दाढ़ी रखने का हुक्म समझ लिया। और यही वजह है कि हमारे यहाँ हमारे जलीलुल कदर इमाम में इमाम शाफ़ी इसको ऐसे नहीं लेते।
ठीक गम साहब, दाढ़ी के हवाले से जो एक बहुत बुनियादी एतराज़ किया जाता है वो यहाँ पर पाया तकमील को पहुँचा। हम इस मौजू को यहाँ पर रोक के अब दूसरे एतराज़ की तरफ आते हैं। और मेरा एहसास ये है कि जिस तरीके से दाढ़ी एक बहुत ही हसासियत रखती है मुस्लिमत उम्मा के नज़दीक मर्दों की हैसियत से, इसी तरह से जो दूसरा मसला है वो है औरतों के पर्दे से मुतल्लिक। तो
इस हसासियत का आप जिक्र करते हैं सर बर्रे सगीर में।
अच्छा,
मैंने आपसे ऐसा किया कि जहाँ जहाँ शवाफे हैं वहाँ इस तरह की कोई हसासियत नहीं है। आप जाएं मराकश में, आप जाएं मिस्र में, आपको मसाजिद के अइम्मा मिलेंगे जिनकी कोई दाढ़ी नहीं है। और दुनिया की अकवाम में अर्ज़ कर चुका हूँ कि एक बहुत बड़ी तादाद है, यानी एक दो नहीं, चार पाँच नहीं, करोड़ों की तादाद में है जिनकी दाढ़ी होती ही नहीं,
तो उनके हसासियत भी नहीं है,
तो इस वजह से ये होता नहीं इस तरीके से।
ठीक, तो हम सब औरतों के पर्दे के हवाले से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कोशिश हमारी यही है कि उसी तरतीब से चलें, कुरान मजीद की आयात, फिर अहादीस और फिर लोगों के माशर्ती और तहजीबी तासुरात। लेकिन मैं इब्तदा में एक परसेप्शन जो है उसको आप तक मुंतकिल करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उसको आप, वैसे तो आप बहुत हौसले से चीज़ों को सुनते हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि जो लोगों के तासुरात हैं, जज्बात हैं, वो मैं आप तक पहुँचाऊँ, और मैंने बहुत कोशिश की कि वो मैं कैसे पहुँचाऊँ इन चीज़ों को सामने रखते हुए। तो मुझे मौलाना मौदूदी की किताब पर्दा में से एक इकतबास मिला, तो मुझे लगा कि वो बिल्कुल वही तासुर बयान करते हैं जो लोग आपकी पर्दे की आरा के बारे में समझते हैं। मैं 1 मिनट में वो पढ़ देता हूँ। मौलाना ये कहते हैं कि 19वीं सदी के आखिरी ज़माने में आज़ादी निस्वा की जो तहरीक मुसलमानों में पैदा हुई है, उसके असली मुहर्रिक यही जज्बात और रुझानात थे। बाज़ लोगों के शऊर खफ़ी में ये जज्बात छुपे हुए थे और उनको खुद भी मालूम न था कि दरअसल वो किस तहरीक की तरफ अपनी तवज्जुहात को लेके जा रहे हैं। ये लोग अपने नफ्स के धोखे में मुब्तला थे और बास को खुद अपने जज्बात का बखूबी एहसास था, मगर इन्हें अपने असली जज्बात को जाहिर करते शर्म आती है। मौलाना आगे लिखते हैं कि ये खुद तो धोखे में ना थे, लेकिन इन्होंने दुनिया को धोखे में डालने की कोशिश की। बहरहाल दोनों ग्रोहों ने एक ही काम किया, और वो ये कि अपनी तहरीक के असल मुहर्रिकात को छुपाकर जज्बाती और अकली तहरीक उजागर की जाए। औरतों की सेहत, उनके अमली और अकली इर्तकाब, उनके फितरी और पैदाइशी हुकूक, उनके माशी इस्तकलाल, मर्दों के जुल्म और इस्तबदाद से उनकी रिहाई, और फिर मौलाना लिखते हैं कि इन सब का मकसद औरतों को मगरबी तहजीब की तरफ लेकर आना, उनको बेपर्दा करना और उनके जो शहवानी जज्बात हैं उनको उजागर करना है। इसके बाद मौलाना ने जो एक और जुमला लिखा वो ये कि हर साहिब इल्म और अकल अंदाज़ा कर सकता है कि इस तरह की जो तहरीक जो लोग उठाते हैं वो कुरान और सुन्नत से दलाइल तराश के लाते हैं। और मौलाना ये लिखते हैं कि ये लोग दरहकीकत पहले से ये तय कर चुके हैं कि अपने माशरे को मगरबी माशरे की तरफ ढालना है, और फिर कुरान और सुन्नत से दलाइल निकाल के लोगों को मुतवज्जे करते हैं। तो मैं बहुत माजद के साथ दराज नफसी की मैंने, खान साहब, लेकिन आप जब भी कभी बात करते हैं पर्दे से मुतल्लिक, लोग ये कहते हैं कि ये लोग कोई दीनी जज्बा नहीं रखते, ना इन लोगों का कोई मजहबी पस मंजर है। ये हो नहीं सकता कि एक मजहबी आदमी कुरान और सुन्नत पढ़े, उसके अपने घर वाले, उसकी बीवी, उसके बच्चे पर्दा ना करते हों। तो ये लोग जब भी पर्दे पे बात करते हैं तो इनके पेशे नज़र ये होता है कि माशरे को उस मगरबी तहजीब के बराबर लाया जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बहुत माजद के साथ, आप अपना ये फिक्री सफ़र बताएं पहले कि ये पर्दे के पूरे मामले में आने से पहले क्या रुझानात थे, कैसे इस पर तवज्जो की, कोई मगरबी फिक्र से मुतासर हुए, फिर ये कुरान सुन्नत का मुताला किया, हकीकी और सच्ची सच्ची बात बताया जाए।
मैं बारहा ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि जहाँ तक दीनी उलूम का ताल्लुक़ है वो तो मैं अपने मदरसे के ज़माने में पढ़े हुए था, इसलिए मज़हबी रवायत, अरबी ज़ुबान, फ़ारसी ज़ुबान, हमारे यहाँ दरस निज़ामी के उलूम व फ़नून, इनसे मैं वाकिफ़ था। तो इस वजह से मज़हब के मामले में ऐसा नहीं था कि मैं कोई बेगाना था उससे। मेरे वालिद ख़ुद एक सूफ़ी थे और इस पस मंज़र में मेरा घराना भी एक मज़हबी घराना था, मज़हब की अकदार और इन सब चीज़ों की नहायत इज़्ज़त करने वाला। हमारे ख़ानदान की गांव में अपनी मस्जिद थी और मेरे अपने अज़ीज़ा अक़रबा वहाँ पर खिदमात अंजाम देते रहे हैं, तो इस वजह से ये तो कोई सवाल ही नहीं था। मौलाना सैयद अवलुल्लाह साहब मौदूदी का इकतबास आपने पढ़ा है, मैं कई मरतबा बता चुका कि मैंने तो असल में इल्मी और फ़िक्री शऊर की आँख उनकी आगोश में खोली है, और ये जो उनके तसव्वुरात थे इन्हीं के अंदर ज़िंदगी शुरू की थी, उनकी जद्दोजहद का हिस्सा बन के ज़िंदगी शुरू की थी। बरसों तक सूरत हाल ये रही है कि मैं तो इसका भी कायल नहीं था कि ख्वातीन दस्ताने पहने बगैर बाहर चली जाए,
आपकी अपनी अहलिया का भी यही मामला था उसका,
बुरका पहनती रही। मेरी वालदा तो वो बुरका पहनती थी जो आप जिसको कहते हैं कि वो एक टोपी वाला बुरका होता है जिसमें सारा का सारा जिस्म छुप जाता है, आपने अफगानी ख्वातीन को पहने हुए देखा होगा। तो इस वजह से यही पस मंज़र था हमारा। मैंने जब दीन पर गौर करना शुरू किया तो फिर तमाम तासुबात को एक तरफ रख दिया, जज्बात को भी एक तरफ रख दिया, और ये समझने की कोशिश की कि हकीकत में अल्लाह ताला क्या चाहते हैं, अल्लाह के पैगंबर ने क्या हिदायत दी है, और हम मुसलमानों की तारीख़ में जो जलीलुल कद्र अहले इल्म रहे हैं वो किस तरह समझते हैं। लोग आमतौर पर ये ख्याल करते हैं कि ये सब कुछ को देखे बगैर कोई राय कायम कर ली गई है। अभी आप देख सकते हैं कि मेरी दो अहम तरीन तहकीक़ात के ऊपर मौलाना अम्मार ख़ान नासिर साहब ने एक लंबा सिलसिला मज़ामीन लिखा है, मैं तवज्जो दिलाऊंगा कि उसको पढ़ लीजिए। उसमें उन्होंने बता दिया है कि उन तहकीकात के पस मंज़र में मुसलमानों की इल्मी तारीख़ के क्या मबाइस हैं। इससे पहले अहले इलम उसको किस तरह देखते रहे हैं। ख़ास इस पर्दे के बारे में हमारे अज़ीज़ दोस्त मौलाना आमिर गज़दर साहब ने अपना PhD का मकाला लिखा है और उसमें भी पूरी तरह बता दिया है कि इससे पहले क्या आ रही हैं, अहले इलम इसको कैसे देखते रहे हैं, इसमें क्या इख्तलाफात रहे हैं। असल में हम बिल्कुल अपने करीबी माहौल में असीर होते हैं। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मेरे एक अज़ीज़ थे, उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक अहले हदीस बच्चे के साथ कर दी।
अच्छा,
और हुस्ने इत्तेफाक कहिए, सुए इत्तेफाक रमज़ान आ गया, वो एतकाफ पर बैठ गए, ये उनको मिलने के लिए गए, वो अहले हदीस की मस्जिद में बैठे हुए थे। ये वहाँ गए, सारी ज़िंदगी कभी पता ही नहीं था कि रफ़े यदैन भी हो सकता है, आमीन ज़ोर से भी कही जा सकती है। तो जैसे ही सुना तो नमाज़ तोड़ के बाहर निकला है और ये कहा कि तो काफिरों की जगह पर आ गया हूँ मैं। तो हमारे यहाँ भी सूरत हाल यही है कि हमने अपने करीब के उलमा से बाज़ बातें सुनी होती हैं, बाज़ चीज़ें सिर्फ बर्रे सगीर में सुनी होती हैं, उससे ऊपर उठ के कभी देखा ही नहीं होता। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जब वो पहले पहल अपने देहातों से निकल के हरम में जाते हैं या मिसाल के तौर पर सऊदी अरब में मुलाजमत करने के लिए चले जाते हैं तो बड़ी अजनबियत महसूस करते हैं कि ये तो कोई और ही दीन है। अच्छा, अभी इन्होंने तो नवाफिल नहीं पढ़े, अभी सुन्नतें नहीं पढ़ी, अभी ये नहीं हुआ। तो इस वजह से ये ज़रूरी होता है कि आप तासुबात और जज्बात को एक तरफ रखें और आप अपने दीन को समझने की सही करें। मैं फिर अर्ज़ कर दूँ कि उसके समझने में गलती हो सकती है, हम सब इंसान हैं, लेकिन इस्तदलाल पर निगाह करना और समझना, हम इसकी रवायत नहीं डालेंगे तो हमारे यहाँ ये सब चीज़ें बिल्कुल ऐसे ही तासुबात की सूरत इख्तियार करके वही जज्बात पैदा कर देंगी जिसमें हम एक दूसरे को काफिर करार देते, उसकी तजलील तफसीक करते, किसी आदमी की नीयत पर हमलावर हो जाते। हम भूल जाते हैं कि हमारे पैगंबर ने क्या रवैया इख्तियार किया इस तरह के मामलों में, और ये भी भूल जाते हैं कि अल्लाह की हिदायत क्या है। आप ज़रा सूरह हुजरात पढ़िए, इज्तनिबू कसीरम मिन ज़न्न इन्न बाज़ ज़न्न, अपने मुसलमान भाइयों के बारे में ज़्यादा गुमान ना किया करो, इन्न बाज़ ज़न्न इस्म, ये सख्त गुनाह की बात बन जाएगी। इसी तरीके से कोई किसी का मजाक ना उड़ाए, तमस्कुर ना करे, इस्तेहज़ा ना करे, गाली ना दे, कोई बुरी बातें ना कहे। ये फरमाया कि ये जो बुरे बुरे नाम रखना है या इस तरह के बाज़ जुमले कसना है, ये सब कुछ जो है ये गुनाह की बातें हैं। तो हमें इल्मी मिजाज पैदा करना चाहिए और शाइस्तगी के साथ ये कहना चाहिए कि हमें इस बात से इख्तलाफ है। तो ऐसा नहीं है, मैं वही पस मंज़र रखता हूँ, उसी में मैंने ज़िंदगी बसर की है, बरसों हमारे ख़ानदान के अंदर वही रवायात मौजूद रही हैं। उसके बाद मैंने तहकीक का जब काम किया तो जिस नतीजे पर मैं पहुंचा उसको मैंने अपनी किताब मीज़ान में तफसील के साथ बयान कर दिया है। अपनी तफसीर में, सूरह नूर की तफसीर में, सूरह अहज़ाब की तफसीर में अपना नुक्ता नज़र बता दिया है और अब उसके ऊपर इल्मी काम कर रहे हैं लोग बहुत सी यूनिवर्सिटियों में। अनकरीब वो सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया है कि मौलाना आमिर गज़दर साहब का मकाला तो अरबी ज़ुबान में है, अब शाये हो जाएगा, देख लेंगे लोग, उसमें पूरी तारीख उन्होंने बयान कर दी है कि ये पस मंज़र है इस मसले का, ये अहले इलम की आरा रही हैं और मेरा नुक्ता नज़र भी इसमें बयान कर दी।
ठीक, अच्छा, हम सब ये बात तो समझ में आती है कि आपने अपना इस्तदलाल इल्मी बुनियादों पर दिया, लेकिन मौलाना मौदूदी ने जिस नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाई है पर्दे की इस बहस में, ये भी तो आप मानेंगे ना कि मगरबी तहजीब का बाहर कैफ असर हुआ है हमारी दीनी इल्मी रिवायत पर भी। ऐसे उलमा पैदा हुए जिन्होंने फिर उस तहरीक के साथ कोई मुआफ़त पैदा करने के लिए लिटरेचर भी तसनीफ़ किया है, तो क्या आप इसको बिल्कुल ख़िलाफ़ हकीकत बात समझते हैं जो मौला ने कही है?
ऐसे क्यों कहा जाए? देखिए, मुफ्ती मोहम्मद अब्दहू हैं, रशीद रज़ा हैं, सर सैद अहमद ख़ान हैं, इसी तरह मौलाना सैद अबुल्ला साहब बहदूदी हैं, शिबली नौमानी हैं, मौलाना अमीन हसन इस्लाई हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, बड़े जलील कदर अहले इल्म हैं, इसी तरह शेख गजाली हैं मिसाल के तौर पर, इख़वान के लोगों में से सैयद कुतुब हैं। तो ये जितने लोग भी दौरे हाजिर में पैदा हुए हैं नहायत नेक नीयत हैं, ना हमें इनके मुहर्रिकात तलाश करने चाहिए, ना ये ख्याल करना चाहिए, कभी खलबत में भी ख्याल नहीं करना चाहिए कि ये बदनीयती की वजह से या किसी से मरूब होकर ये बात करेंगे। एक साहिब इल्म बाज़ औक़ात किसी मसले की तरफ मतवज्जे होता है हालात की तब्दीली से। यानी मैंने इसकी मिसाल दी थी कि इससे पहले तस्वीर कोई मसला ही नहीं थी, इस वजह से लोगों ने जो बात समझी तो ये ख्याल करते रहे। यानी मौलाना सैयद अबुल्ला साहब मौदूदी ने, आप तफीमुल कुरान में देखिए, ये कहा है तस्वीर हराम मुतलक है और उसमें कोई फ़र्क नहीं किया, यानी वो मुँह कलम से बनी हुई है, वो कैमरे पर आ रही है, वो किसी भी नौयत की तस्वीर है। लेकिन आप देखें वक्त के साथ अब कौन आलिम भी रह गया है कि जो तस्वीर नहीं खिंचवाता, फेसबुक पर देख लीजिए, दूसरी जगहों पर देख लीजिए। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो जिस वक्त शुरू होती हैं तो ऐसा ही रद्द अमल होता है। लेकिन ये तस्वीर के बारे में तब्दीली आई कैसे? यानी ये बहसें कैसे पैदा हुई कि ये वो मुंह कलम वाली तस्वीर नहीं है, चलिए ये तो कैमरे की तस्वीर है, ये तो अपनी जगह मुस्तहकम नहीं होती, इस तरह की चीज़ें आपने क्यों निकाली, क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि तस्वीर इल्म का ज़रिया बन गई, इब्लाग का ज़रिया बन गई, अखबार का ज़रिया बन गई, पासपोर्ट की बुनियाद बन गई, शनाख्ती कार्ड की बुनियाद बन गई, हर जगह तस्वीर का इतने बड़े पैमाने पर शुरू हुआ कि आप गौर करने के लिए मजबूर हो गए। तो ये बसा औकात होता है। फिर मैं इससे आगे बढ़ के पूछूंगा, सवाल ये है कि ये जो जितनी बहस हुई है इस्लामिक बैंकिंग की, ये आसमान पर बैठे हुए हो गई, एक पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन वजूद में आ गया, उस इंस्टीट्यूशन ने दुनिया की मईशत का अहाता कर लिया, उस अहाते के नतीजे में सवालात पैदा हो गए। तो बसा औकात दुनिया में आने वाली तब्दीलियाँ आपको तहकीक की तरफ मतवज्जे करती हैं, यानी इससे पहले आपने गौर नहीं किया होता। तो आप पलट के दयानतदारी के साथ देखते हैं कि जो बात हम कह रहे थे कहीं हम अपनी इंटरप्रिटेशन में गलती तो नहीं कर रहे थे, उसकी गलती वाजे हो जाती है।
बिल्कुल ठीक। अच्छा गाम साहब, बड़ी तफसील से आपने इस हसास चीज़ को भी गुफ्तगू में लेकर आए। अब हम तरतीब से शुरू करते हैं, जो हमारा तरीका है कि भाई कुरान मजीद में ज़ेर बहस है, हदीस में है। सबसे पहला सवाल, बहुत बुनियादी सवाल, ये जो इस्तलाह है पर्दा, या अरबी में इसको मसलन हिजाब का कह के बयान किया जाता है, इस लफ्ज़ का माखज़ क्या है आपके इल्म की हद तक? ये कहीं कुरान मजीद में ज़ेर बहस है, किसी और दीनी रिवायत में ज़ेर बहस है, ये लफ्ज़ कहाँ से आ गया?
ये भी बड़ा दिलचस्प आपने सवाल किया। यानी ये पर्दा, हिजाब, अरबी में हिजाब कहते हैं ना इसको, ये जिस तरह के हमारे यहाँ एक फ़िकी चीज़ या एक शरीयत का हुक्म समझ के बयान किया जाता है, दीन का पूरा ज़खीरा इससे बिल्कुल खाली है।
अच्छा,
ना ही कुरान मजीद में इस लिहाज से ज़ेर बहस आया है, ना ये किसी हदीस में इस लिहाज से ज़ेर बहस आया है। यानी ये बात कि हिजाब का कोई हुक्म है जिसको अल्लाह ताला ने, अल्लाह के पैगंबरों ने ऐसे बयान किया है, कुरान मजीद में ये लफ्ज़ कहाँ इस्तेमाल हुआ है? वो जो घर के दरवाजे पर पर्दा डालते हैं उसके लिए इस्तेमाल हुआ है, मिम्बराए हिजाब। यानी ये जो हिजाब का तस्वुर अब हमारे यहाँ है, या पर्दे की इस्तलाह जो आमतौर पर बोली जाती है, ये कुरान मजीद की इस्तलाह नहीं है, ये हदीस की इस्तलाह नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ भी देखिए ये तवज्जो दिलाई अपनी किताब मीज़ान में कि सही ताबीर ये नहीं होगी, यानी पर्दे के अहकाम, पर्दे का हुक्म, ये तो हमारे यहाँ एक अजनबी चीज़ है ही नहीं हमारे इल्म में। जो चीज़ बयान हुई है कुरान मजीद में वो क्या है? वो हकीकत में ये है कि मर्द व जन के इख्तलात के मौके पर, यानी जब औरतें और मर्द इकट्ठे हों, तो किन आदाब का लिहाज रखना चाहिए, आप जिसको एटिकेट्स कहते हैं। तो इसी वजह से मैंने जो उन्वान कायम किया है अपनी किताब मीज़ान में, वो मर्द व जन के इख्तलात का उन्वान है। ये भी एक आप यूँ समझिए कि इस्लाह की है तसव्वुर में, कि हम एक चीज़ को बयान कर रहे हैं तो ख्वातीन को आप वो पैगाम दे रहे हैं जो उनके लिए कुरान में है ही नहीं। यानी उनको ख्वातीन हैं, मर्द हैं, तो उनको पैगाम ये दीजिए कि अगर वो महज़ब ज़िंदगी बसर करना चाहती हैं या चाहते हैं, तो अल्लाह ताला ने मिलने जुलने के ये आदाब बताए। तो जब आप इस जगह से बात करते हैं तो बात उनकी समझ में आती है। लेकिन अगर आप पर्दे का लफ्ज़ बोलते हैं तो उसका लाजमी नतीजा ये निकलता है कि औरतों को तो बाहर निकलना ही चाहिए, उनके लिए तो असल दायरा मल उनका घर है, उनको उसी में बंद रहना चाहिए। किसी ज़रूरत के वक्त बाहर निकलें तो निकलें, बाहर भी निकलें तो फिर असल में तो उनको उसी तरह का बुरका पहनना चाहिए जिस तरह का मैंने अपनी वालदा के बारे में आपको बताया। तो ये तसव्वुर उससे पैदा होता है। क्या ये तसव्वुर दीन में है? आप सारे ज़खीरे का मुताला करके आपको कहीं इसका शायबा भी नहीं मिलेगा।
यानी ये लफ्ज़ कहीं ज़ेरे बहस ही
ज़ेरे बहस ही नहीं है। जो चीज़ ज़ेरे बहस है वो आदाब है, एटिकेट्स हैं। यानी ये बताया जा रहा है कि देखो तुम घरों में जाओ तो इजाज़त किस तरीके से लो, तुम मिलो तो किस तरीके से अपने निगाहों पर पैरा बैठाओ, इस तरह की चीज़ें जो बयान की गई हैं उसके लिए सही तरीन ताबीर अगर कोई हो सकती है तो वो वही है जो मैं बरसों से इख्तियार किए हुए मर्द व जन के इख्तलात के आदाब, औरतों और मर्दों के एक दूसरे के साथ मेल जोल के आदाब।
ठीक ठीक हम सब। अच्छा, अगला सवाल ये है कि इन मेल जोल के जो आदाब हैं, इनका सोर्स कहाँ है, रेफरेंस कहाँ है, माखस क्या है? यानी हम ये देखते हैं कि दीन के दो सोर्सेज हैं, आप बार बार तवज्जो दिलाते हैं, कुरान मजीद और सुन्नत। अब मसलन हम अल्लाह मियाँ के पास जाना चाहते हैं पूछने के लिए कि मेल जोल के आदाब क्या हैं, तो इन मेल जोल या इख्तलात मर्द जन के आदाब का सोर्स क्या है? कुरान मजीद है, सुन्नत है, क्या है?
कुरान मजीद है। यानी ये सब चीज़ें कुरान मजीद में ज़ेरे बहस आई, कुरान ने इनको ख़ुद मौजू बनाया है। ये सूरह नूर में ज़ेरे बहस आए हैं और बड़ी तफसील से ज़ेरे बहस आए हैं, और फिर कुछ चीज़ें सूरह अहज़ाब में ज़ेर बहस आई हैं जो एक वक्ती नौईयत की सूरत हाल से मुतल्लिक हैं। वो इसलिए अहम हो गई हैं कि हमारे यहाँ कुछ अहले इल्म ने उनकी तामीम की है, यानी वो उनको आम लोगों के लिए भी ज़रूरी समझते हैं, या उनका फहम ये है कि उसमें गालिबन ये बात बयान हुई है, तो वो भी ज़ेर बहस आती हैं, लेकिन असलन ये आदाब सूरह नूर में बयान हुए हैं।
ठीक। अच्छा, अगला सवाल गाम साहब ये है कि आम तौर पे समझा जाता है कि ये जो आदाब आप बयान कर रहे हैं सूरह नूर में बयान हुए हैं, ये औरतों के इख्तलात से मुतल्लक हैं। ये यहाँ पर बताइएगा कि ये जो आकाम है ये क्या औरतों के लिए वहाँ पर ज़ेर बहस आए हैं?
औरतों और मर्दों दोनों के लिए ज़ेर बहस आए
अच्छा,
हैं,
दोनों के लिए ज़ेर
यानी
बहस।
आप अंदाज़ा करें कि उसमें तो सबसे पहले ये बताया गया है कि आप अगर जाएं कहीं तो आप इजाज़त कैसे लेंगे, आप उन्स कैसे पैदा करेंगे, घर वालों को अपना तारुफ कैसे कराएंगे। अगर घर वाले आपसे इस वक्त नहीं मिलना चाहते और वो ये कह देते हैं कि आप चले जाएं वापस, या आगे से नहीं जवाब देते, तो आप दिल में तंगी महसूस किए बगैर आ जाएंगे, तो इस्तिज़ान कहते हैं इसको। इसी तरह बताया कि घरों के अंदर किन चीज़ों का लिहाज रखेंगे, तो वहाँ ये सब सब चीज़ें बहुत तफसील से ज़ेर बहस आई हैं, और ये बताया कि एक पाकीज़ा माशरत के लिए, फिर तवज्जो दिलाऊंगा वही तज़किया, यानी तुम्हारे दिलों को भी पाकीज़ा रहना चाहिए, तुम्हारी माशरत को भी पाकीज़ा रहना चाहिए, तुम्हारे मेल जोल को भी पाकीज़ा रहना चाहिए। तो फरमाया है कि ये असल में अज़का वाथर लिक़ुलूब है, यानी हमारे दिलों के लिए ये चीज़ पाकीज़गी का बायस बनती है। मर्दों को भी कहा है, औरतों को भी कहा है, एक बात है जो सिर्फ औरतों को खास तौर पर कही है, बाकी तो अल्लाह ताला ने वहाँ ये तरीका अख्तियार किया है कि ऐ पैगंबर आप मोमिन मर्दों से ये कह दें, उसके बाद आता है मोमिन औरतों से ये कह दें, मोमिन मर्दों से ये कह दें, मोमिन औरतों से ये कह दें, तो दोनों को दोहरा के कहा है ताकि कोई वहम ही पैदा ना हो इसमें। तो अगर इसको आपने बयान करना है तो ये कोई औरतों के लिए पर्दे के अहकाम नहीं है, ये मर्दों और औरतों दोनों के लिए अहकाम है।
ठीक
किस चीज़ के हैं वो एक अलग बहस है,
ठीक
लेकिन दोनों के लिए।
अच्छा, हम सब आगे बढ़ाते हैं इस बहस को। अब आप ये बताइए कि ये जो मौजूद बहस है मर्द जन के इख्तलात के मामले में, इसको वाजे कीजिए कि इसमें आपका नुक्ता नज़र, जैसे आपने शुरू में बताया लोगों को एक अजनबी नुक्ता नज़र महसूस होता है, वो उसकी इब्तदा कहाँ से होती है? वो क्या इल्मी इख्तलाफ राय है जो कुरान मजीद की इन दो सूरतों को समझने में वाक़ हुआ? और फिर मैं चाहूंगा कि इन दोनों सूरतों में जो आपका नुक्ता नजर है उसको आप बरह रास्त कुरान मजीद की वो आयात खोल के बताएं कि वो है क्या।
ये सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब मैंने अर्ज़ कर दिया कि बिनाए बहस तीन ही मकामात, यानी सूरह अहज़ाब में दो मकामात और सूरह नूर का ये मकाम बिनाए बहस यही है, तो इनकी जब आप तफसीर करेंगे, इनको समझेंगे, तो एक तालिबे इल्म की तरह, जैसे मैंने बारहा तवज्जो दिलाई है कि अगर आप कुरान मजीद को जानना चाहते हैं तो जो कुछ पहले से आप जानते हैं, जो चीज़ें आप दूसरों से सुनते हैं, जो आपकी माशरत में राइज हैं, उनको आप एक तरफ रख दीजिए और फिर एक बिल्कुल तालिब इल्म की हैसियत से कुरान के सामने जाके सरेंडर कर दीजिए, उसकी बात सुनिए वो क्या कहता है, आपको जो कुछ कुरान मजीद समझाए, फिर आप एक निगाह डाल के देखिए एक सच्चे तालिब इल्म की हैसियत से कि ये तो मैं आज इसको देख रहा हूँ। सवाल ये है कि मुझसे पहले भी 12-13 सदियों में अहले इल्म इसको देखते रहे हैं, तो आप उनके तावीलात, उनकी तशरीहात, उनकी तफसीरें, उन पर एक निगाह डालते हैं। निगाह डालने के बाद आप देखते हैं कि जो बात मैंने समझी थी और अगर दूसरे मुझसे मुख्तलिफ समझ रहे हैं तो उनका इस्तदलाल कवी तो नहीं है। फिर इसका तकाबुल करने में एक उम्र गुजरती है, यहाँ तक कि फिर आप उस नतीजे पर पहुँच जाते हैं कि नहीं, यहाँ ये बात सही है। तो जो बात मैं समझा हूँ सूरह नूर में या सूरह अहज़ाब में, ये ऐसा नहीं है कि उसके हर जुज़ में मैं मुनफरद हूँ, बाज़ चीज़ों में मेरी इनफरादियत है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर जब आप इसका मुताला करेंगे और देखेंगे कि मसलन अहनाफ क्या कह रहे हैं, मसलन उसूलीन क्या बात कर रहे हैं, मसलन हमारे अहले तफसीर क्या कर रहे हैं, मुख्तलिफ आयात को कैसे देखा जा रहा है, तो आप ये देखेंगे कि मेरी आरा की बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको उन लोगों के यहाँ भी मिलेंगी।
फैली
बल्कि
हुई है।
दौरे हाजिर में मसलन आप सैयद रशीद रज़ा को पढ़ेंगे, आप मुफ्ती मोहम्मद अब्दहू को पढ़ेंगे, आप हसन तुराबी साहब को पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि वो एक मुख्तलिफ अप्रोच से कमोबेश उन्हीं नतज तक पहुँच रहे हैं। मैंने इसलिए तवज्जो दिलाई कि मौलाना आमिर गज़दर साहब ने इसका बड़ा तफसीली मुताला किया है, यानी मेरा भी नुक्ता नज़र और इससे पहले जो नुक्ता है नज़र है, तो जब ये तसनीफ लोगों के सामने आएगी तो उनको अंदाज़ा होगा कि क्या पस मंज़र है इस सारी बहस का। ये इतनी सादा बात नहीं है जैसे लोग इसको देखते हैं, इसमें बड़ी दकीक बहसें हैं, मैं सिर्फ एक चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाऊंगा, आपने मौलाना सैयद अब्दुल्ला साहेब मौदूदी का जिक्र किया, बड़ी काबिल एहतराम शख्सियत है, यानी मेरे लिए तो वो बाप के दर्जे में है। आप ये देखिए कि जिस तरह वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखते हैं इस मामले में, तो जब उन्होंने तफ़ीमुल कुरान में अबू बकर जस्सास पर, जलीलुल कदर हनफी आलम इब्तदाई ज़माने के, उनकी राय नकल की है, तो उस पर ताज्जुब का इजहार किया है कि अच्छा जस्सास ये मानते हैं, क्यों, वजह क्या है? इसलिए कि आपके गिर्दो पेश की मुआशरत और है। आप जानते हैं कि हमारी दिल्ली की अशराफिया, हमारे यहाँ की जो तहजीबी रवायत है, उसमें ये पर्दा वहाँ भी नहीं रहा था जहाँ पर इसको बाज़ उलमा बयान कर देते हैं, ये उससे बहुत आगे जा चुका हुआ था। यानी इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें शामिल हो गई थी कि जो आपको किताबों में कहीं मिलेंगी नहीं, उलमा के यहाँ ज़ेर बहस ही नहीं होंगी। मिसाल के तौर पर यह कि औरतें पालकी में निकलें, आप अंदाज़ा करें कि उसमें ये तक मलहूज़ रखा जाता था कि आपने एक ड्यूड़ी के अंदर जाके वो पालकी रख देनी है, उसमें भी कोई ईंट पत्थर रख दिया जाता था कि वज़न तक का अंदाज़ा ना हो। खातून आके बैठ जाएगी, कहार उसको उठाएंगे और पालकी में ले जाके किसी दूसरे की जूड़ी में पहुंचा देंगे। इसी तरह से अगर उस बेचारी ने कपड़े धोने हैं, तो उनके लिए भी यह है कि कहीं ऐसी किसी अलगनी पर न डाल दे जिसको लोग देख रहे हैं। उसने बाल बनाए हैं और बाल कंघी में आ गए हैं, वो भी कहीं दफन होने चाहिए ताकि उस पर किसी की निगाह ना पड़ जाए। तो ये जितनी चीज़ें मैंने खुद अपनी माशरत में ये देखी, अपने यहाँ देखी, अपनी ख्वातीन को ये बात करते हुए देखा है, क्यों, वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जिस वक्त आप किसी चीज़ को इस तरह माशरत, तहजीब, सकाफत का हिस्सा बना देते हैं, तो उसमें इंतहा पसंदियाँ पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये पस मंज़र है, यानी ये अशराफिया का एक ख़ास रहन सहन है। वरना मुझे ये बताएं, मैं एक देहाती आदमी हूँ, यानी ये जो कुछ है पर्दा, ये हमारी माएँ ऐसे ही करती थी, इसी तरीके से हमारे अपने तहजीबी पस मंज़र में ये समझा जाता था, इसी को दीन का तकाजा। मैं किसी वक्त हैरान होता था, मैं बिल्कुल यानी उन देहात में रहा हूँ जो बिल्कुल बाहर के देहात हैं, उनमें पैदा हुआ पला बड़ा, तो मैं हैरान होता था कि ये पर्दा जो मेरी वालदा कर रही हैं, ये तो इस पूरे गांव की किसी औरत ने भी नहीं किया हुआ।
इन वो जो खेतों में काम
वो
करती हैं,
खेतों में काम कर रही हैं, बाहर जा रही हैं, पानी ला रही हैं, हमारे घर में आ रही हैं, यानी इस तरीके से गोया दो अलग अलग सिंफें वजूद में आ गई हुई थी। अच्छा, वहाँ किसी को तरद्दुद भी नहीं होता था। आप ये देखिए कि वही मुगलानी, वही काम करने वाली, जिसको आप अपने यहाँ पंजाब वगैरह मासियाँ कहते हैं, वो दिल्ली के घरों में आ रही हैं। आप बीपी नज़ीर अहमद के नावल पढ़िए, वहाँ किसी के माथे पर शिकन नहीं आती, पर्दा किधर गया? लेकिन जो अपनी ख्वातीन है, उनके लिए बिल्कुल दूसरे। तो ये चीज़ें जब इस तरह तहजीबी रवायत का हिस्सा बन जाती हैं, तो लोग इनमें बड़े हसास हो जाते हैं। इस हसासियत को एक तरफ रख देना चाहिए, ये हालात से पैदा होती है। मैं इसको उलट के कहूँगा, जिस तरह मौजूदा ज़माने में तहजीब, फैशन, मगरबी माशरत ने हमें बहुत सी चीज़ें जिनके बारे में हसास होना चाहिए, उनमें बेहस कर दिया। यानी ज़माना कैसे असरअंदाज होता है, आप दोनों इंतहाओं को देखें ना। यानी उस तरफ वो इंतहा है कि पालकी के बाहर बाहर कदम नहीं रखना, आपके कंघी में टूटे हुए बाल पर भी किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए, दरा हाल के उनमें मुझे बताइए क्या चीज़ बाय से कशिश होती है। तो एक तरफ ये इंतहा, और दूसरी तरफ वो इंतहा पैदा हो जाती है कि जिसमें आप कहते कपड़े ही उतार दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। यानी आपने अगर दो धजियाँ भी अब लपेटी हुई है तो बहुत काफ़ी है, आपने बिकनी भी पहनी है तो बहुत काफ़ी है। तो इसका नतीजा क्या है, वो वहाँ पे वो हसासियत भी तहजीबी माशरत ने पैदा की है, और ये बेहिसी भी तहजीबी माशरत ने पैदा की है। तो अल्लाह की किताब का असल कमाल क्या होता है, और अल्लाह के पैगम्बरों की रहनुमाई का, कि वो इंसान को उस सिरात मुस्तकीम पर रखते हैं जिसमें न ये इंतहा होती है न वो इंतहा होती है। इंसान की फितरत, जिस पर हम इससे पहले बड़ी तफसीली बात कर चुके हैं, वो ठीक उस पर अपने दीन की बुनियाद रखते हैं। यानी इसी वजह से इस्लाम को दीन फितरत क्यों कहा जाता है, ये वही बात है जो सूरह रूम की आयत में ज़ेर बहस आई थी दाढ़ी पर गुफ्तगू करते हुए, कि अल्लाह ताला ने इंसान की जो फितरत बनाई है, उसके अंदर जो दाइयात रखे हैं, उन्हीं के ऊपर असास कायम है सारे के सारे दीन की। तो उसका मतलब क्या है, कि उसमें अदना दर्जे में भी आप कोई इंतहा पसंदी नहीं देखते, एक ज़्यादा एतदाल। गालिबन यही वो चीज़ है जिसको सामने रख के अल्लाह ताला अपने दीन, अपनी हिदायत को सिरात मुस्तकीम कहते हैं। और एक मौके के ऊपर क्या कबाल की बात कहते हैं, लोगों को तवज्जो दिलाने के लिए। यानी ये जो दाएं और बाएं इंतहाएं आपको नज़र आती हैं, तो वो ये कहते हैं कि ये क्यों पैदा होती हैं, इसलिए कि लोग बग़ैर हुदम वाला किताब मुनीर गौर करते हैं। यानी अगर वो उस रोशन किताब की रहनुमाई अपने सामने रखें और अपने जहनी तासुबात को अलग कर लें, मैंने फलां मौली साहब से ये सुना हुआ है, हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है, फलां जगह तो ये माना जाता है, इन चीज़ों को थोड़ी देर के लिए अलग रख दें और अलग रख के मुताला करें। मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि जिस तरह मैंने इस सारे के सारे मौजू को देखा है और जिस तरह अपनी किताब मीज़ान में बयान किया है या अपनी तफसीर में बयान किया है, आप इसको एक तरफ रख दें और सिर्फ ये तय कर लें कि आप रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से जो मुसलमानों का इल्म पैदा हुआ है, ख्वा वो मुहद्दिसीन हैं ख्वा वो आपके फुकहा हैं, आप पढ़ेंगे उनको कि वो किस तरह देख रहे हैं इन आयात को, तफसीरों को देखेंगे, तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये जिस चीज़ को आप कहते हैं कि ये तो बड़ी मानी हुई है, इसमें तो हर आदमी इसी का कायल है, आप इतने इख्तलाफात देखेंगे जिसकी कोई नहीं। तो इस वजह से ये मामला इतना सादा नहीं है जिस तरह के लोग इसको समझ लेते हैं कि बस यही होगा। अच्छा, इसी तरह बहुत से किस्से, बहुत सी रवायतें लोगों की ज़ुबानों पर हैं। हद ये है कि मौलाना सैयद अबुल्ला साहिब मौदूदी की जो किताब है पर्दा, अगर आप देखें उसमें, मैंने तो बहुत जवानी के ज़माने में जब वो पढ़ी, अगर आप देखें तो उसमें बहुत सी रवायतें उन्होंने नकल की हैं।
जी
ये किताब अरबी में तर्जमा की गई अलहिजाब के नाम से, और इसको अल्लामा नासिरुद्दीन अल्बानी ने शाये किया, और आप देखें उसके आखिर में उन्होंने उन तमाम रवायात पर तनकीद करके बता दिया कि उनमें एक भी रवायत सही नहीं, यानी ज़ईफ़ रवायतों का एक मजमू है। उसकी वजह क्या है कि हमारे यहाँ मुहद्दिसाना तनकीद का तरीका रवायतों पर बिलमूम हिंदुस्तान के उलमा इख्तियार ही नहीं करते थे, यानी जब वो एक चीज़ के बारे में ये मुतमिन हो जाते थे कि ये तो दीन का हुक्म है, तो उसके बाद रवायत ज़ईफ़ है, रवायत बहुत कमज़ोर है, वो सब की सब चीज़ें उसमें बयान करते चले जाते थे। तो मुहद्दिसाना तनकीद के नुक्ता नज़र से आप देखें तो कोई बुनियादी नहीं बाकी रहती उन किस्सों और कहानियों की भी। तो इस वजह से ये ज़रूरी है कि इस सारे मामले को इस जाविये से देखा जाए और तासुबात से बालातर होकर जज्बात एक तरफ रख के अपनी तहजीबी रवायत और मुआशरत को, जो मेरी भी थी, उससे थोड़ी देर के लिए कतई नज़र कर लिया।
ठीक। अच्छा, हम सब आगे बढ़ाते हैं बहस को, हमारे पास 15 मिनट अभी बाकी हैं। कम से कम वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो वाज़े हो जाए। हम जानते हैं कि उलमा का इस वक्त जो राइज मुआसर नुक्ता नज़र है दीनी मज़हबी हलकों का, और जिसको वो बुनियाद बनाते हैं आप पे एतराज़ की, वो ये है कि कुरान मजीद की सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला ने ये बता दिया है कि ख़वातीन जब घरों से निकलेंगी तो उन्होंने अपने जो दुपट्टे हैं, अपने जो सर की ओढ़नी है, उनको अपने चेहरों पर गिरा देना है। इससे अखस करते हैं पर्दे के आकाम। तो ये बताइए कि आपकी बिनाए इस्तदलाल क्या है, ये जो एटिकेट्स आपने सीखे हैं, और इस हुक्म को जो सूरह अहज़ाब में है इसको आप कैसे देखते हैं?
ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, मैं इससे ज़रा मज़ीद पीछे जाऊँगा। सूरह अहज़ाब को सबसे पहले समझना चाहिए कि इस सूरह का मौजू क्या है, यानी ये पूरी की पूरी जो सूरह है, आप इसको देखें मेरी तफसीर अल बयान में, तो उसमें मैं जब तफसीर में तारुफ लिखता हूँ सूरतों का, तो मैं ये बताता हूँ कि पूरी सूरह की फ़ज़ा क्या है। यानी पूरी सूरह की फ़ज़ा ये है कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के घराने, उनको बाकायदा हदफ बना लिया गया है कि अब इनकी अखलाकी साख सोसाइटी में मजरू करनी
ठीक।
है। यानी रसूलुल्लाह सल्लम ने जो दीन हमें दिया है, और हमें शुक्रगुजार होना चाहिए उस हस्ती का जिसके ज़रिए ये दीन मिला, जब वो दीन को बयान कर रहे थे, जब वो ये जद्दोजहद कर रहे थे, जब वो लोगों को इसको पहुंचा रहे थे, तो ऐसा नहीं था कि मेरी आपकी तरह किसी मेज़ पर बैठे हुए इत्मीनान के साथ पहुंचा रहे थे। एक बड़ी कशमकश बरपा हो गई थी, और ये कशमकश एक अंदाज से मक्के में बरपा हुई। आप जानते हैं कि उसमें कैसे कैसे सितम तोड़े गए, किस तरह के इकदाम किए गए, ख़ास तौर पर कमज़ोर मुसलमानों के ख़िलाफ़ कैसे लोगों ने उनको सितम रानियों का निशाना बनाया। जब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ़ लाए हैं, तो वहाँ अहले किताब थे, वहाँ बहुत से लोग वो थे जिनको बाद में कुरान मजीद ने मुनाफिकीन से ताबीर किया। ये जितने लोग हैं, इनकी तरफ से तरह तरह की साजिशें हुई हैं, और सबकी कुरान मजीद ने तस्वीरें बयान किया, यानी वो कोई किस्से कहानियों की बात नहीं। हुजूर को अजियत देने के लिए आप देखें एक मस्जिद बना डाली है, जिसको कुरान ने मस्जिद ज़रार कह के ये कहा कि इसको ढा दें, इस मस्जिद को, छोटी सी एक बस्ती है चंद हज़ार की आबादी की, जिसमें वो लोग मौजूद हैं कि बज़ाहिर वो मुसलमान बने हुए हैं। सैयदा आयशा के ऊपर जो तोहमत का वाक़या बयान हुआ है, यानी आप कभी देखें कि कोई सलीमो तबा आदमी उस वाक़े में तोहमत निकाल सकता है, निकाल ली गई। तो एक ऐसी फ़ज़ा थी कि जिसमें पहले हमला करने की कोशिश की गई, बाहर से हमलावर बुलाए गए, रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़ात पर हमलावर हुए, आपको घरों में बुलाकर आपके ऊपर पत्थर गिराने की कोशिश की गई, इस तरह की बेशुमार चीज़ें हुई। आखिरी ये दौर है जो 4-5 हिजरी के बाद आया है, जिसमें हदफ बनाया गया कि आप अखलाकी साख खत्म कर देनी है, और अखलाकी साख खत्म कर देने के लिए आपके घराने, आपकी बेटियों, आपकी बीवियों और जलीलुल कदर सहाबा की जो बीवियां थी उनको हदफ बना लिया गया। अब जब ये हदफ बना लिया गया तरह तरह के स्कैंडल बनाने के लिए, यानी पेशे नज़र क्या था, ज़ाहिर देहाती माशरत है, कोई किस्सा कोई कहानी जो है, आप भी वो वाक़यात पढ़ें जिसमें सैयदा पर तोहमत लगाई गई है कि घर में क्या सूरत हाल हो गई, हुजूर कितने आज़ुर्दा हो गए, यहाँ तक कि वो अपने घर से सैयदा आयशा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा वो वालदैन के घर चली, आज़ुर्दगी का ये मामला हो गया कि गोया मियाँ बीवी के दरमियान मुफारकत तक नौबत आ गई। ये सूरत हाल आप देखें उस मौके पर हुजूर ने कितने रंजीदा होकर बाज़ गुफ्तगू में किए हैं,
जी
बाज़
बस
सवालात किए हैं, मस्जिद में कैसा हंगामा बरपा कर दिया गया, यानी एक मौके पर जब आपने उससे मुतल्लिक अपने तासुरात का इजहार किया, आपस में सहाबा इकराम के तबसरों की नौइयत क्या बना दी गई, कैसे कैसे लोग उसमें मुलव्वस हो गए, उनका जिक्र किया कुरान मजीद ने। तो ये सूरत हाल और पस मंज़र था कि जिसमें ये फ़ज़ा बन गई कि रसूलुल्लाह सल्लम का घर, आपकी ख्वातीन, ज़ाहिर है एक आम देहाती माशरत है जिसमें सब लोग रह रहे हैं, ये गोया स्कैंडल का हदफ है। अब अगर ये कोई स्कैंडल बन जाता, खुदा न खास्ता झूठा या जिस तरह का भी था, ये बन जाता और इसकी शोहरत हो जाती, तो इसका मतलब क्या था कि अल्लाह का पैगंबर जो हिदायत का मंबा है, जिसकी तरफ हम सब ने क्यामत तक देखना है, जिसकी दी हुई हिदायत ही के ऊपर पूरी इंसानियत को खड़ा होना है, उसकी शख्सियत मजरू कर दी गई। ये इतना बड़ा मामला है जो असल में सूरह अहज़ाब का पस मंज़र है, यानी सूरह अहज़ाब जो है वो इस मसले को देख रही है कि अब इसमें क्या करना है। पहले तो ये बुनियादी बात समझनी चाहिए। अगर आप कुरान में तदब्बर, हमारे यहाँ एक आम रिवाज ये है कि आपने कुरान खोला, अच्छा ये पर्दे की आयत है, अच्छा यहाँ ये हुक्म दिया गया है, वो निकाली और नहीं देखा कि सूरा क्या है, पस मंज़र क्या है, बात कहाँ से चली आ रही है, और बस बात बयान करना शुरू कर दी। तो आप पहले तो ये देखें, और अगर इसका ज़ौक हो कि आप इस सूरा के अंदर उतर कर जान सकें, तो इसके लिए तदब्बुर कुरान मेरे जलील कदर उस्ताद इमाम अमीन हसन इस्लाही की ज़रा उसका मुताला करें, आपको अंदाज़ा होगा कि क्या सूरत हाल बना दी गई है हुजूर के लिए। अब उसमें मैं उन आयात पर आने से पहले कि जिसमें मुसलमान औरतें भी शामिल हैं, आपको तवज्जो दिलाऊंगा कि खुद हुजूर के गिराने के मामले में क्या हो गया। पहला काम क्या हुआ, अब अल्लाह ताला देखिए इस कायनात का खालिक उस सूरत हाल से निमट रहे हैं। वैसे तो कोई मुश्किल काम नहीं, अजाब नाजिल हो जाता, लेकिन वो पेश नज़र नहीं है, तो उस सूरत हाल से निमटना है। उससे निमटने के लिए आपसे ये कहा गया कि आप अपनी बीवियों से कहें कि वो इंतखाब कर लें एक बार फिर, अगर वो आज़ादाना ज़िंदगी बसर करना चाहती हैं तो करें, इसलिए कि मुहिमात इसी तरह की औरतों के ज़रिए से चलाई जा रही थी, यानी इस तरह के पैगामात होते थे, कहीं मौका मिल गया बात करने का कि आप तो शहज़ादी हैं, आपकी तो बड़ी हैसियत है, ये आपको किन हालात में रखा हुआ है, इन्होंने आप अगर यहाँ ना होती तो मालूम नहीं कौन कौन थे कि जो आपके साथ शादी करने के लिए तैयार होते, इस तरह की फ़ज़ा बनाई जा रही है। तो उसमें ये कहा गया कि आप अपनी अजवाज को, अजवाज मुतहरात को ये तख़ीर इसको कहा जाता है, चॉइस दे दें कि वो अगर आपको छोड़ के जाना चाहती हैं तो चलिए, कोई उनके ऊपर मसला नहीं होगा, यानी हम आपके लिए दूसरे बंदोबस्त कर देंगे। अब ये क्या चीज़ थी, यानी मकसद ये था कि इस मौके पर अजवाजे मुतहरात जिस किरदार का मुजाहरा करेंगी उसके लिहाज से ये फितना दम तोड़ देगा, हौसले पस्त हो जाएंगे। जैसे सैयदना इब्राहिम को एक इम्तहान से गुजारा गया, तो अजवाजे मुतहरात को भी इस इम्तहान से गुजारा गया, और इस इम्तहान से ये आसान मामला नहीं था, यानी तरगीबात की एक दुनिया बाहर मौजूद है। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, जैसे कि फिर कुरान मजीद की इस आयत के तहत रिवायात से मालूम होता है कि जाके अपनी अजवाज से बात की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो एक लम्हे के लिए नहीं सोचना, हम बहुत सोच समझ के आपके साथ हैं और आप ही के साथ रहेंगे। तो उन्होंने इंतखाब कर लिया, जब इंतखाब कर लिया यानी पहले चॉइस दिया गया, आप आम औरतों की ज़िंदगी बसर करना चाहती हैं तो आप चली जाएं, अगर आप चली जाती हैं तो हम आपको इत्मीनान के साथ खुश उसलूबी से रुख्सत कर देंगे, यानी रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आप नहीं रहेंगी, ये आपको इख्तियार दिया जा रहा है, पहले ये बात कही गई। जिस वक्त उन्होंने ये इंतखाब कर लिया तो फिर उन्हें कहा गया कि अब हम आपको बाज़ ख़ुसूसी अहकाम दे रहे हैं ताकि ये जो स्कैंडल बनाने वाले लोग हैं इनका खात्मा किया जा सके। वो ख़ुसूसी अहकाम देने से पहले ये बताया कि लस्तुन्ना का अहदम मिन अन्निसा, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, तुम्हारी हैसियत बड़ी गैर मामूली हो गई है, तुम तुम पैगंबर के साथ हो तो अब पैगंबर को तुम्हारे जरिए से और तुम्हें पैगंबर के हवाले से देखा जाता है। तो इसलिए अपनी इस जिम्मेदारी को पहचानो और देखिए अल्लाह ताला का इंसाफ, यानी जो चीज़ें आम लोगों से मतलूब नहीं है, पहले उन्हें आम लोगों की ज़िंदगी बसर करने का हक दे दिया गया। अगर वो उस वक्त को इंतखाब कर लेती तो आम ज़िंदगी बसर करती, लेकिन उन्होंने जब पैगंबर ही का इंतखाब किया, जो इज्जत जो शरफ उनको हासिल था उन्होंने उसी को अपनी सआदत समझा और सब ने बगैर किसी तौक्फ के ये कह दिया कि नहीं, इसका कोई सवाल ही नहीं है। जब ये बात हो गई तो अल्लाह ताला ने कहा कि अब हमें कुछ खसूसी अहकाम देने हैं, और ये खसूसी अहकाम देते वक्त ये जहन में रखो कि अगर कोई गलती हुई तो जिस तरह दोहरा अजाब है तुम्हारे लिए, इसी तरह से चूंकि तुम ये जायद जिम्मेदारियां और पाबंदियां कबूल कर रही हो तो तुम्हारी हर नेकी का दोहरा अजर भी, यानी उसकी बुनियाद ही बिल्कुल यहां से रखी है। ये रखने के बाद रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज मुताहरात से ये कहा गया कि आप अब हिजाब में हो। ये असल में ये है वो जगह जहां से ये मसला पैदा हुआ है, यानी अजवाज मुताहरात के मामले में ये फैसला किया गया कि वो बाहर निकलेंगी तो इहतमाम करके, और अगर घर में होंगी तो वहां भी कोई इसी तरह नहीं आएगा। मस्जिद में बैठने वाले लोग भी अगर कोई चीज लेनी है तो किस तरह आएंगे, उनसे कहा गया कि आपको बाहर की सरगर्मियां भी खत्म कर देनी। उसी में ये अल्फाज आए, वह करना फी बुयूतिकुन्ना, तुम अपने घरों में वकार के साथ रहोगी, वहाँ नमाज का अहतमाम करोगी, रोजे का अहतमाम करोगी, दीनी सरगर्मियों में मसरूफ रहोगी, और जो अल्लाह ने बड़ी नेमत तुमको दी है उसकी तबलीग की जिम्मेदारियाँ अंजाम दोगी। ये हिदायत उनको की गई, उनके लिए दायरा मुकर्रर किया गया कि आपके करीबी अज़्ज़ा अक़रबा के सिवा कोई और घर में भी नहीं आएगा। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कोई खाने की दावत होगी, क्या होगा, उसके भी आदाब मुकर्रर कर दिए गए, और इसके साथ ये ऐलान कर दिया गया कि आपके बाद कोई शख्स इन ख्वातीन से निकाह भी नहीं कर सके। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाबंद कर दिया गया कि आप इनको तलाक भी अब नहीं दे सकते, इनकी जगह कोई दूसरी बीवी भी नहीं ला सकते। तो ये असल में वो खसूसी अहकाम है जो अजवाज मुताहरात को दिए गए थे, और यकीनन उन्हीं के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल भी हुआ, यानी वो हिजाब में रहेंगी, उसका एहतमाम करेंगी। ये अहकाम है जिनको बाज़ अहले इल्म ने इस तरह से समझा कि वो चूंकि इस पूरी उम्मत के लिए आइडियल थी तो उनको अहकाम दे दिए गए हैं, और फिर एक एक चीज़ से अहकाम मुस्तंबत करने शुरू कर दिए। मसलन आप देखिए कि अजवाज मुताहरात से ये कहा गया कि आम हालात में तो हर आदमी जब आपके घर आता है या बाहर से बात करता है तो उससे नरमी से, शफकत से बात करनी चाहिए, आप तो माए हैं और आपकी यही हैसियत है। लेकिन ये मुनाफिकीन चूंकि स्कैंडल बना रहे हैं तो अगर किसी वक्त कोई बात करे तो ऐसा लबो लहजा रखिए कि जिसके नतीजे में किसी के अंदर अगर तमा मौजूद है तो उसको होश आ जाए। अच्छा, अब आप देखिए कि ये किस पस मंजर में बात कही जा रही है, यानी आप को मालूम है कि आपके घर पर कुछ लोग हमलावर होने वाले हैं और आप ख्वातीन को कोई हिदायत कर रहे हैं, वहां से क्या कहा कि औरत की आवाज का पर्दा, यानी ये आप देख रहे हैं ना, यानी एक जाविया नजर की गलती, पूरे पस मंजर को जो सूरा से बिल्कुल वाजे है, आयत आयत से वाजे है, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने एक एक स्टेप को वाजे किया है, यानी पहले मौका दिया कि वो जाके आम औरतों की जिंदगी बसर करें, फिर यहां से बात शुरू की कि लस्तुन्ना काहदम मिन निसा, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, फिर बताया कि तुम्हारे लिए अब अजर भी दोहरा होगा, गलती करोगी तो सजा भी दोहरी होगी। ये सब कुछ कहने के बाद ये हिदायत दी गई। अच्छा, इसी तरह जब ये कहा गया कि वह करना फी भी उतर करना, तो क्या कहा जा रहा है कि आम औरतों ने बाहर निकलना है, घरों से बाहर जाके कोई काम करने हैं, खेतों में जाना है, उन्होंने जाके जानवर चराने हैं, जो उस वक्त की माशरत है, तुम लोगों को अब ये सब काम में बिल्कुल नहीं जाना किसी चीज़ में, तुम्हें घरों में वकार के साथ रहना है ताकि इस स्कैंडल का मुकाबला किया जा सके। अब इससे लोगों ने क्या इस्तेमाल किया कि औरत का दायरा अमल उसका घर, चार दीवारी के अंदर रहना है। दरा हाले कि अगर आप उस जमाने की फिर देखें कि जब ये अहकाम नाजिल हुए हैं अजवाज मुताहरात के लिए, तो इसका बाकायदा अहतमाम किया गया कि कहीं दूसरी औरतें इससे मुशाबहत ना इख्तियार कर लें, इसलिए कि उससे फिर इल्तबास का खतरा था। तो इसलिए ये अजवाज मुताहरात के लिए खसूसी अहकाम थे। हमारे जलीलुल कदर अहले इलम और मुहक्किकीन की एक बहुत बड़ी जमात है जो इनको ऐसे ही देखती रही है और बिल्कुल दुरुस्त देखती रही है, यहाँ तक कि आप शाह अब्दुल कादिर, आपके पहले कुरान मजीद के हिंदुस्तान में उर्दू के मुतरजम हैं, उनका दो लफ्ज़ों का हाशिया देख लीजिए, उन्होंने भी ये बात इसी तरीके से बयान किया। लेकिन फिर उनके बाद हमारे यहाँ के उसी मजहबी पस मंज़र में, यानी जब इल्मी तरीका नहीं रहा चीज़ों का, तो ये जितनी चीज़ें हैं मौलाना सैयद अबुल्ला साहब मौदूदी जब इनको बयान करते हैं तो वो वही काम करते हैं। ये देखिए, ये आवाज़ का पर्दा हो गया, ये आपने घरों में दायरा अमल तय कर दिया गया, ये तमाम चीज़ें हो गई। जबकि इस पस मंज़र में रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात के लिए ये खसूसी अहकाम दिए गए, इनका आम औरतों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये जिस पस मंज़र में दिए गए वो मैंने आपको सूरह से वाज़े तरीके से बता दिया है।
बहुत बहुत शुक्रिया गाम साहब, हमारे पास यहाँ वक्त ख़त्म हो रहा है। सूरह आज़ाब के इस पस मंज़र के बाद वो जो आयत है उसको इंशाल्लाह हम अगली नशिस्त में ज़ेर बहस लाएंगे। और इसके अलावा आपने ज़िक्र किया मौलाना अमीन हसन इस्लाही का, वो इसको कैसे देखते थे सूरह आज़ाब के नाकाम को, और इनसे क्या नतीजा अख़ज़ करते थे, उस पर आपकी राय। और फिर अहादीस इस ज़मन में जो ज़ेर बहस आती हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मकतब गामदी की इसी सीरीज़ में, जो आप पर 23 एतराज़ात आम तौर पे किए जाते हैं, ज़ेर बहस हैं, आइंदा इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया राम साहब।
बहुत शुक्रिया।